नमस्कार। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने आते ही बहुत हलचल मचाई, मतलब प्रशंसा भी हुई पर विवाद भी खूब हुआ। जीन एंड कमिंस की अमेरिकन डर्ट।
हाँ बिल्कुल, ये वो किताब है जिसने लोगों को, आप कह सकते हैं, दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ जबरदस्त तारीफ, दूसरी तरफ उतनी ही तीखी आलोचना।
और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है ना। जीन एंड कमिंस, जिनकी माँ प्यूटरेकन है और पिता आयरिश अमेरिकन, वो पहले भी लिखती रही हैं। उनका एक संस्मरण था रिप इन हेवन, वो भी दुख और परिवार पर ही था।
जी, लेकिन अमेरिकन डर्ट जो जनवरी 2020 में आई, वो कुछ अलग ही निकली। ओपरा विनफ्रे ने इसे चुना, बेस्ट सेलर बन गई।
हाँ, और इसे पेश ऐसे किया गया जैसे ये आधुनिक प्रवासी अनुभव पर एक बहुत जरूरी, एक अहम उपन्यास।
लेकिन फिर जैसा आपने कहा, विवाद छिड़ गया, खास तौर पर लैटिनेक्स साहित्यिक समुदाय की तरफ से। आवाजें उठीं कि ये सांस्कृतिक विनियोग है, मतलब कल्चरल अप्रोप्रिएशन, और प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी खड़ा हुआ।
बिल्कुल। सवाल यह था कि कमिंस, जिन्हें ज्यादातर श्वेत ही माना जाता है, क्या वो मेक्सिकन प्रवासियों के उस खास दर्द को, उस आघात को सही मायने में दिखा सकती हैं? उन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप्स को बढ़ाया है।
हाँ, और ये भी कि कहानी को शायद अमेरिकी पाठकों के लिए थोड़ा आसान बना दिया गया है। कुछ लोगों ने तो इसे ट्रॉमा पॉर्न तक कह दिया, मतलब दुख का सनसनीखेज चित्रण।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन सब पहलुओं को देखें। कहानी क्या है, किरदारों का सफर कैसा है, इसके मुख्य विषय क्या हैं, और हाँ, ये विवाद इतना गहरा क्यों है। हम बस अलग अलग नजरिए सामने रख रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे। चलिए शुरू करते हैं फिर।
कहानी हमें ले जाती है मेक्सिको के अकापुल्को शहर। एक वक्त था जब ये अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, जन्नत जैसा, पर अब ये ड्रग कार्टेल की गैंग वॉर का मैदान बन चुका है। यहीं हमारी मुलाकात होती है लीडिया क्विक्सानो पेरिस से। एक मध्यम वर्गीय महिला है, छोटी सी किताबों की दुकान चलाती हैं, पति हैं सेबेस्टियन, वो एक पत्रकार है, और एक 8 साल का बेटा लूका।
तो एक तरह से उसका जीवन शहर की जो भयावहता है उससे काफी हद तक बचा हुआ सा लगता है ना।
अपनी किताबों की दुनिया में, बिल्कुल। उपन्यास में बाद में इस पर एक टिप्पणी भी है कि लीडिया प्रवासियों के बारे में जानती तो थी, पर जैसे घर के कोनों में जमी धूल के बारे में जानती है। मतलब धुंधला सा पता था कि वो गरीब है, हताश है,
पर उनकी असल कहानी नहीं जानती थी। ये एक तरह की विलासिता थी उसके लिए, लेकिन ये शांति, ये दूरी अचानक टूट जाती है।
हाँ, एक झटके में। लीडिया की भतीजी की क्विंसी नीरा पार्टी चल रही है, और तभी लॉस जार्डिनेरोस कार्टल के लोग वहां घुस आते हैं, अंधाधुन गोलियां।
ओह।
लीडिया और लूका बाथरूम में छिप जाते हैं, किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने परिवार के 16 लोग मार दिए जाते हैं, जिनमें लीडिया का पति सेबेस्टियन भी है।
और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था,
ये एक टारगेटेड किलिंग थी।
जी हाँ,
सोचा समझा नरसंहार।
और इसका कारण सेबेस्टियन का काम, उसकी पत्रकारिता।
बिल्कुल, उसने अपने एक लेख में लॉस जार्डिनेरोस के नए, काफी रहस्यमयी से लगने वाले सरगना की पहचान उजागर कर दी थी। ये उसी का बदला था।
और यहां कहानी का सबसे, मैं कहूंगी सबसे चौंकाने वाला और दुखद पहलू सामने आता है, इस कार्टल का सरगना जेवियर क्रिस्पो फ्यूएंट्स।
हाँ, और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? यही जेवियर लीडिया की किताबों की दुकान पे अक्सर आता था, एक नियमित ग्राहक था।
क्या?
हाँ, पढ़ा लिखा, कविताओं और साहित्य का शौकीन। लीडिया की उससे किताबों पर बातें होती थी, एक तरह की अनजानी सी दोस्ती पनप गई थी।
ये तो बहुत ही भयानक है। एक ही आदमी कवि भी है और कातिल भी। ये सिर्फ खलनायकी नहीं, ये तो एक तरह का धोखा है, विश्वासघात।
कापलको में अब कोई जगह सुरक्षित नहीं,
तो एक ही रास्ता बचता है,
भागना।
भागना उत्तर की ओर, एल नॉर्ते, अमेरिका।
और यहीं से वो सफर शुरू होता है जो उपन्यास का केंद्र है, जान बचाने की जद्दोजहद। पहला कदम क्या होता है उनका?
वो बस से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर पल डर, हर अजनबी चेहरा शक पैदा करता है, पैरानोया है।
और यहीं पर लीडिया की जो पुरानी पहचान है, उसकी मध्यम वर्गीय आदतें हैं, वो उसके लिए मुसीबत बन जाती हैं, जैसे वो एटीएम कार्ड वाली घटना।
हाँ बिल्कुल, वो अपने पति का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करती है और बस कार्टल कोन की लोकेशन का अंदाजा लग जाता है, वो बाल बाल बचते हैं।
ये एक टर्निंग पॉइंट है ना, उसे एहसास होता है कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी का कोई निशान इस्तेमाल नहीं कर सकती।
जी,
उसे अदृश्य होना होगा, गुमनाम, उन हजारों चेहरों में शामिल होना होगा जो उत्तर की तरफ जा रहे हैं। अपनी पहचान मिटानी होगी।
और यहीं हम लीडिया का बदलना देखते हैं। वो जो एक शोक में डूबी हुई, किताबों में खोई रहने वाली महिला थी, वो अब एक शेरनी बन जाती है जिसका एक ही मकसद है, अपने बेटे को बचाना।
हाँ, उसका पूरा वजूद अब सिर्फ माँ का रह जाता है। ये मातृत्व का बहुत शक्तिशाली चित्रण है। वो दिखाती है कि जिंदा रहने के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है, किन हदों तक जा सकता है।
और उसका बेटा लूका, 8 साल का, वो इस कहानी की आत्मा है। जैसा आपने कहा, बहुत समझदार बच्चा है, नक्शों का शौकीन।
जी, भूगोल में उसकी बहुत रुचि है, लेकिन उसने अपने परिवार को मरते देखा है। वो आघात उसे वक्त से पहले बड़ा बना देता है। चुप ज्यादा रहता है, पर जब बोलता है तो उसकी बातें बहुत गहरी होती हैं।
हाँ, उपन्यास में एक जगह आता है ना कि लूका अब वो लड़का नहीं है जो अकापुल्को में था। वो लड़का मर चुका है, ये एक नया लड़का है, जैसे वो अपनी राख से दोबारा पैदा हुआ हो। मासूमियत का खो जाना कितना दर्दनाक है ये।
बिल्कुल, और वो अपनी माँ के लिए एक सहारा भी बनता है कई बार। खैर, उनका सफर आगे बढ़ता है, पैसे खत्म होने लगते हैं, और तब उन्हें वो रास्ता चुनना पड़ता है जिससे प्रवासी सबसे ज्यादा डरते हैं, ला बेस्टिया।
वो मालगाड़ियां जिन पर छिपकर सफर करना पड़ता है।
हाँ, चलती ट्रेन पर दौड़कर चढ़ना, कूदना, मौसम की मार, गिरने का डर और लुटेरों का खतरा जो इन कमजोर लोगों का शिकार करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक सफर है।
और इसी ला बेस्टिया पर उनकी मुलाकात होती है दो और किरदारों से, सोलेदाद और रेबेका, दो बहनें।
जी,
होंडुरास से भागी हुई हैं। वो इस सफर की माहिर खिलाड़ी हैं, एक तरह से पहले से ही बहुत कुछ झेल चुकी हैं। रेबेका सुंदर है तो उसे मर्दों की गलत नजर का सामना करना पड़ता है। सोलेदाद उसकी हिफाजत करती है, बहुत प्रोटेक्टिव है।
और शुरुआत में वो लीडिया और लूका को शक से देखती हैं। हाँ, उन्हें लगता है ये लोग शहर के हैं, नाजुक हैं, क्या झेल पाएंगे ये सब। प्रिविलेज का एक एंगल आता है वहाँ। लेकिन धीरे धीरे जब वो एक ही खतरे का सामना करते हैं, एक ही मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तो उनमें एक रिश्ता बन जाता है,
एक छोटा सा अस्थाई परिवार।
बिल्कुल, मुसीबत में अजनबी भी कैसे अपने हो जाते हैं ये देखने को मिलता है। और उनकी कहानी से हमें प्रवासी संकट का एक और पहलू पता चलता है, खासकर अकेली लड़कियों और औरतों को जो खतरे झेलने पड़ते हैं।
इस पूरे सफर में उन्हें दोनों तरह के अनुभव होते हैं ना, एक तरफ भयानक क्रूरता।
हाँ, जैसे वो भ्रष्ट पुलिस वाले उनका सारा सामान लूट लेते हैं, या फिर जब ला मिग्रा मतलब इमिग्रेशन वाले रेड मारते हैं और लूका कुछ देर के लिए बिछड़ जाता है, वो पल लीडिया के लिए नरक जैसा होता है।
ये दिखाता है कि उनका जीवन कितना अनिश्चित है, हर पल खतरा। लेकिन दूसरी तरफ
उन्हें अजनबियों की दयालुता भी मिलती है। शेल्टर होम्स में मदद करने वाले लोग, रास्ते में कोई खाना दे देता है, कोई पानी। तो ये उपन्यास दिखाता है कि अंधेरे में भी रोशनी की किरणें होती हैं, क्रूरता के साथ करुणा भी मौजूद है। एक शेल्टर चलाने वाला कहता भी है, ये लोग डरपोक चूहे नहीं हैं, वे शेर हैं, वे इस कहानी के नायक हैं।
ये बहुत जरूरी बात है, प्रवासियों को सिर्फ पीड़ित की तरह ना देखकर उनके साहस को पहचानना। अच्छा, अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, रेगिस्तान।
हाँ, सोनोरन रेगिस्तान। एरिज़ोना पहुंचने के लिए इसे पार करना है। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है, बहुत से लोग यहीं दम तोड़ देते हैं, और इसे पार करने के लिए उन्हें कोयोटे यानी मानव तस्करों पर निर्भर रहना पड़ता है।
ये तो उनकी सहन शक्ति की असली परीक्षा होगी।
बिल्कुल, रेगिस्तान पार करना मतलब भयानक पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, दिन में झुलसा देने वाली गर्मी, रात में जमा देने वाली ठंड, और ऊपर से डर कि कहीं बॉर्डर पेट्रोल पकड़ न ले या कोयोट ही धोखा देकर भाग न जाए। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यंत्रणा है।
लेकिन वो कर दिखाते हैं, लीडिया, लूका, सोलेदाद, रेबेका, वो सीमा पार कर लेते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं।
हाँ, पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कोई जीत का जश्न नहीं है, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, बल्कि एक खामोशी है, थकान है, दुख है। वो जेवियर के चंगुल से तो निकल आए हैं, लेकिन
उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, घर, परिवार, पहचान। वो एक नए देश में अकेले हैं और उनके साथ है बस वो भयानक आघात।
जी, उपन्यास यही खत्म होता है एक कड़वी मीठी सच्चाई पर, कि चलो जान बच गई, शारीरिक सफर पूरा हुआ, पर असली लड़ाई, वो भावनात्मक सफर, वो तो अब शुरू हुआ है।
तो ये कहानी है। अब अगर हम इसके मुख्य विषयों पर थोड़ा और सोचें, मातृत्व की शक्ति तो बिल्कुल साफ है, लीडिया का हर कदम, हर फैसला लूका के लिए है।
हाँ, वो तो केंद्र में है ही, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है प्रवासी संकट को मानवीय चेहरा देना। उपन्यास कोशिश करता है कि पाठक आंकड़ों और राजनीति से हटकर लीडिया की जगह खुद को रखकर सोचे, ये दिखाने की कि हालात किसी को भी प्रवासी बना सकते हैं।
बिल्कुल, और इससे जुड़ा है पहचान और मासूमियत का खोना। कैसे यह सफर इंसान को बदल देता है, उसकी पुरानी पहचान मिटा देता है, आघात का असर।
और वो मानवता का दोहरापन भी, क्रूरता और दयालुता का साथ साथ चलना।
हाँ।
हमने इसकी बात की थी।
हाँ। और सीमाओं का विचार भी दिलचस्प है, सिर्फ देश की सीमा नहीं बल्कि सुरक्षा और खतरे के बीच की सीमा, अमीरी गरीबी की सीमा, अपने पराये की सीमा। लीडिया इन सबको पार करती है। उपन्यास में एक जगह कहा भी गया है, प्रवासन केवल सीमाएं पार करने के बारे में नहीं है, ये स्वयं के एक संस्करण से दूसरे में पार करने के बारे में है।
बहुत खूब कहा। अच्छा, अगर हम इसकी शैली पर बात करें, ये तीसरे व्यक्ति के नजरिए से लिखी गई है। ज्यादातर लीडिया के मन में क्या चल रहा है वही पता चलता है।
हाँ।
इसे हम सीधे उसके डर, उसकी दुविधा से जुड़ जाते हैं। और कभी कभी लूका का नजरिया भी आता है जो एक बच्चे की नजर से सच्चाई दिखाता है।
और रफ्तार, कहानी भागती है जैसे कोई थ्रिलर हो, छोटे चैप्टर्स, लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है, क्लिफहैंगर, पाठक बंधा रहता है।
ये तेज रफ्तार भी शायद जानबूझकर रखी गई है उस अनिश्चितता और आपाधापी को दिखाने के लिए जो उनकी जिंदगी बन चुकी है। लेकिन हाँ, इस शैली पर भी सवाल उठे थे। जी हाँ, कि क्या इतने गंभीर विषय को एक थ्रिलर की तरह दिखाना सही है, कहीं ये अनुभव को सतही तो नहीं बना देता।
प्रतीक भी काफी हैं, किताबों की दुकान, मतलब वो खोई हुई जिंदगी, लुका के नक्शे, जैसे वो दुनिया में कोई व्यवस्था ढूंढ रहा हो, और शीर्षक खुद अमेरिकन डर्ट, अमेरिका की धरती जो उम्मीद भी है और दर्दनाक हकीकत भी।
चलिए अब उस विवाद पर आते हैं जिसने इस किताब को सबसे ज्यादा चर्चा में रखा, प्रामाणिकता का सवाल, ऑथेंटिसिटी।
हाँ, मुख्य सवाल यही था कि क्या एक बाहरी व्यक्ति, खासकर एक श्वेत लेखक, एक ऐसे समुदाय के अनुभव को जो हाशिए पर है जैसे मैक्सिकन प्रवासी, उनके इतने गहरे दर्द को क्या वो सही मायने में लिख सकता है?
ये साहित्य में एक बहुत बड़ा और पेचीदा सवाल है। क्या लेखक को सिर्फ अपने अनुभव के बारे में लिखना चाहिए, या कल्पना और सहानुभूति के दम पर दूसरों की कहानियां कहने का हक है?
आलोचकों का कहता था कि कमिंस की कहानी में कई जगह सांस्कृतिक तौर पर चीजें ठीक नहीं थीं, और लीडिया का जो मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड है वो शायद कहानी को श्वेत पाठकों के लिए ज्यादा रिलेटेबल बनाता है, जबकि जमीनी हकीकत शायद ज्यादा अलग और मुश्किल हो।
दूसरी तरफ जो लोग किताब के पक्ष में थे उनका कहना था कि उपन्यास का मकसद सहानुभूति जगाना है। अगर ये कहानी पाठकों को प्रवासियों के दर्द से जोड़ पाती है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कला को सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए।
बिल्कुल, और ये बहस सिर्फ अमेरिकन डर्ट तक सीमित नहीं है। ये साहित्य में प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, किसकी आवाज सुनी जाए, वॉइस और कहानी कहने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बड़े सवालों को उठाती है। कौन कहानी कह रहा है, कैसे कह रहा है और उसका असर क्या हो रहा है, ये सब बहुत मायने रखता है।
जी, हम यहाँ कोई फैसला नहीं दे रहे, बस वो अलग अलग मत सामने रख रहे हैं जो इस किताब को लेकर सामने आए।
तो कुल मिलाकर अमेरिकन डर्ट एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। आप इससे सहमत हों या असहमत हों, ये आपको अंदर तक हिला देती है।
सही कहा, ये याद दिलाती है कि जो बड़ी बड़ी खबरें हम पढ़ते हैं, जो आंकड़े देखते हैं, उनके पीछे असली इंसानी कहानियां हैं। दर्द है, डर है, पर हिम्मत भी है और उम्मीद भी।
शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि हमदर्दी की कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, न देश की न वर्ग की, क्योंकि हालात किसी को भी उस मुश्किल सफर पर भेज सकते हैं।
तो अंत में एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, क्या किसी कहानी के लिए सहानुभूति जगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे दर्शकों के लिए थोड़ा आसान, थोड़ा जाना पहचाना बना दिया जाए, या ऐसा करने में उस अनुभव की गहराई और सच्चाई कहीं खो जाती है जिसे वो कहानी दिखाने चली थी?
मैंडेटरी क्लोजिंग लाइन। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।